ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। एक श्लोक की व्याख्या यहाँ की जाएगी जो श्रील प्रभुपाद को बहुत प्रिय था, और भाई जी हनुमान प्रसाद पद्दार प्रायः इसको उद्धृत करते रहते थे। ये आठवां श्लोक है ब्रह्मा जी की स्तुति में। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणः भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम्। हृद्वाग्बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक्। तत्तेऽनुकम्पां सुसमीक्षमाणः भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकम्। हृद्वाग्बपुर्भिर्विदधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाक्। तस्मात् ते आपकी अनुकंपां अतिशय कृपा को सुसमीक्षमाणः किसी भी परिस्थिति में देखता हुआ, अच्छी तरह से देखता हुआ, भुञ्जानः भोगता हुआ, एव हि आत्मकृतं अपना कर्म का फल, अपने कर्म का फल, विपाकम फल परिणाम, हृदवाग बपुर भी है, मन वचन और शरीर से विदधत करता है, नमः नमस्कार ते आपको, जीवेता और इस तरह जो जीवित रहता है, इस प्रकार जो जीवन धारण करता है, यो जो मुक्ति पदे, वह व्यक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले आपके चरणों में, सह वह भक्त दाय भाग, दाय भागी होता है, आपका उत्तराधिकारी होता है। कल रात्रि में प्रवचन करते समय मैं उस तीसरे श्लोक के साथ इसको बोल रहा था, मुझे कोई ध्यान नहीं था। उसमें भी नमन्ता एव इति आया था, मुझे शक हो रहा था कि दो बार कैसे नमस्ते आएगा, लेकिन फिर भी आवेश था, मैं बोलता गया। तो श्री ब्रह्मा जी भगवत तत्व के ज्ञान की दुर्लभता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभो, जब आप इस जगत में अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के विविध लीलाएं करते हैं, तो आपकी महिमा को, आपके ऐश्वर्य को, ईश्वरताई को, प्रभाव को लोग नहीं जान पाते हैं, और जब आप नहीं अवतार लेते हैं, गोलोक में रहते हैं, अप्रकट वैकुंठ में रहते हैं, तो उस समय कोई क्या जान सकता है। जब आप अवतार लेते हैं उस समय भी नहीं जान पाते लोग। भगवान श्री कृष्ण जब इस पृथ्वी पर विद्यमान थे तो बहुत अधिक लोग उनको भगवान के रूप में नहीं जान पाए। और वैसे श्री कृष्ण को तो कुछ लोग जान गए थे कि ये भगवान है, परब्रह्म है, परंतु भगवान श्री राम को तो कोई नहीं जानते थे। अरे शिव जी के पत्नी सती को भी जब डाउट हो गया भगवान की लीला देख करके, तो दूसरा कोई क्या समझेगा। रावण को लोग समझाते थे, मंदोदरी समझाती थी, विभीषण जी समझाए, हनुमान जी समझाए, अंगद जी समझाए कि वे श्री राम परब्रह्म है, भगवान है, उनके साथ बैर मत करो, सीता को लौटा दो। यहां तक कि मारीच को जब रावण कहा कि तुम सीता को जाकर के लुभित करो और यदि राम तुमको मारने चलेगा तो मैं सीता का अपहरण कर लूंगा, टेस्ट करने के लिए वो मारीच को कहा, तो मारीच के पास रावण अकेले गया था। राजा लोग अकेले नहीं चलते हैं, उनके साथ सचिव, सेनापति या कोषाध्यक्ष और भी सैनिक चलते हैं, लेकिन रावण उस दिन अकेले गया। जब शूर्पणखा ने विलाप कर दिया कि दो लड़के आए हैं अयोध्या से, हमारा नाक कान काट दिए बिना गुनाह के, बिना अपराध, वो तो अपनी सफाई दे रही थी, तो रावण को रात को नींद नहीं आई, सवेरे मारीच के पास गया। मारीच उसका मामा लगता था, लेकिन मामा हो चाहे कुछ भी हो, ये रावण किसी को प्रणाम नहीं करता था। तो मारीच के पास गया तो मारीच पूछा कि कैसे अकेले आए, कौन सा विशेष पर्पस पर गया। रावण कहा कि सुनो, मैं काम से आया हूं, दो लड़के अयोध्या से आए हैं और उनके साथ एक बहुत सुंदरी स्त्री है, मैं स्त्री का अपहरण करूंगा क्योंकि हमारे बहन का नाक कान काटा है इन लोगों ने। तो मारीच पूछता है, मैं एक बार रामलीला देख रहा था तो मारीच नहीं, रावण के सभा में कोई राक्षस पूछा, क्या क्या शूर्पणखा की नाक कान कट गई? अरे हाँ, काट दिया, कोई अयोध्या से लड़का आया है। तो जोकर पूछ रहा था रावण के सभा में, क्या कारण था शूर्पणखा को पंचवटी में जाने का, रावण से प्रश्न करता है, और वहीं पर वो रो रही थी, बिलक रही थी, क्या कारण था इसको पंचवटी में जाने का, कुछ तो भी कारण होगा ये नकटी कान कटाने का, कुछ तो कारण जरूर होगा इसके नाक कान कटने, क्यों गई वहां। तो रावण डांट दिया, चुप, तुम मेरे सिस्टर पर ऐसा प्रश्न कर सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, मतलब मेरे बहन की कोई गलती है ही नहीं, सरासर गलती उन लड़कों की है। तो इस तरह से कहा तो वो जोकर दब गया, मैं गलत पूछ दिया, ठीक यही प्रश्न मारीच किया रावण से। जब रावण ने कहा कि नाक कान कट गई हमारे बहन की, वो लड़के बहुत बदमाश हैं, उनके पास जो बहुत सुंदरी स्त्री है उसका मैं हरण करूंगा और तुम मेरी सहायता करो, क्या सहायता, जब इसने कहा कि उसकी पत्नी का हरण करूंगा, तब मारीच कहा कि देखो, मैं तुमसे कुछ कहने का साहस इसलिए कर रहा हूं कि मैं तुम्हारा मामा हूं, मुझे विश्वास है कि मेरी बात पर तुम ध्यान दो। तो रावण कहता है, इस समय तुम्हारा भांजा बनकर नहीं आया हूं, मामा हूं, मामा हूं, साला कहेंगे, पहचान तो मैं राजा हूं ना, मैं राजा हूं, राजाओं के साथ इस तरह का संबंध नहीं देखना चाहिए, तुम्हें बोलने में शर्म नहीं आई कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, तुम्हें तो कान खोलकर मेरी आज्ञा सुननी चाहिए, मैं कुछ कहने आया हूं ना। तो मारीच डर गया, अच्छा ठीक है कहिए, मैं कह रहा हूं कि तुम कोई कपटी भेष बना करके जाओ राम के पास, उस स्त्री को लुभाओ और हरिण बनो, सोने का हरिण बनो, गोल्डन चाम दिखाओ दिखाओ, और तुमको मारने के लिए वो लड़का जब निकलेगा तो मैं उसी समय सीता का हरण कर लूंगा, ये मेरा आदेश है। मामा कहा कि देखो रावण, ये मैं जानता हूं कि मैं जवाब दूंगा तो तुम मुझे मार दोगे, कि मारो चाहे कुछ भी करो, तुम्हारा हित करने मेरा कर्तव्य है, क्योंकि तुम्हारे माई का भाई हूं मैं हित करना चाहता हूं। जिस राम की तुम चर्चा कर रहे हो वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है, ये ध्यान रखो, वो भगवान है, लीला कर रहे हैं पृथ्वी का भार दूर करने के लिए। तुम्हारा मामा होने का अभिमान मुझे नहीं जा रहा है, तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, तुम विश्वास करो मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं। और तुम कभी ऐसा दुस्साहस मत करो कि सीता का हरण करो, कभी मत करो, नहीं तो तुम मर जाओगे, तुम मारे जाओगे। इतना सुनते ही रावण तलवार खींच लिया, कहा कि मैं मना किया कि मुझे इंस्ट्रक्शन मत दो, फिर भी तो उपदेश पर उपदेश चालू रखते हो, तुमको दिमाग है कि नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, मैं कहा ना कि मुझे उपदेश मत करो, और बोलो मेरी आज्ञा का पालन करते हो कि नहीं। तो मारिच सोचा कि आखिर वहां जाऊंगा तो राम मारेंगे, और यहां नहीं जाता हूं, यहां रहता हूं तो रावण मारेगा। तो मारिच ने सोचा कि बेटर है राम के हाथ से मर जाना, इस दुष्ट के हाथ से मरना ठीक नहीं। एक संस्कृत के नीति श्लोक में कहा गया है कि बड़े व्यक्ति का लात खाना भी ठीक है, जैसे घोड़ा अगर लात भी मारे तो सहा जा सकता है, लेकिन गधे पर चढ़ना नहीं चाहिए। ऐसा एक संस्कृत का श्लोक है। तो राम के हाथ से मरना ठीक है, रावण के हाथ से नहीं। पर अंत में वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि मारिच गाली देता हुआ जा रहा था रावण को, कि ठीक है मैं जा रहा हूं, लेकिन तुमको मरना है, मरना है, तुम मरोगे, बार बार कह रहा हूं तुम मरोगे, मान नहीं रहा है, आज हमको गाली दे रहा है, ये कर रहा है, तो तुमको मरना है। तो रावण कहा ठीक है जाओ जाओ, तो चला गया। तो मेरे कहने का आशय है कि मारिच समझा रहा था, मंदोदरी समझा रहे थे, सब लोग समझा रहे थे रावण को कि ये भगवान है, भगवान है, लेकिन नहीं माना, वो कभी भी नहीं माना। मैं किस बात पर ये कहने लगा भूल गया। हाँ, तो इस संसार में जब भगवान उपस्थित रहते हैं तो लोग, बहुत कम लोग जानते हैं, यहां तक कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। रावण बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति था पर दुराचारी था, और अपने ज्ञान से भगवान को नहीं पहचान पाए। उसने सोचा कि अगर मृग बना करके मारिच को भेजूंगा तो यदि वह मनुष्य का लड़का होगा तो मारिच के कपट वेश को नहीं समझ पाएगा, वो मारने चलेगा तो उसकी पत्नी को हर लूंगा, और यदि जान जाएगा कि ये मारिच है तब मैं मान लूंगा कि वो भगवान है, तब सीता का हरण नहीं करूंगा, डायरेक्ट जाकर युद्ध करूंगा और उसके हाथ से मर जाऊंगा, ये रावण सोचा था। लेकिन टेस्ट में तो भगवान चल दिए हरण के पीछे, इसलिए रावण मान लिया कि ये मनुष्य है। तो लाखों लोग समझाए, बहुत लोग समझाए रावण को कि ऐसा बैर मत करो, भगवान है वो, ये भगवान है, भगवान है, भगवान है, लेकिन रावण नहीं माना। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब आप अवतार लेकर के आते हैं इस पृथ्वी पर और बहुत सी अमानवीय लीला करते हैं, जैसे समुद्र पर पुल बांध देना, सेतु बना देना, ये सामान्य बात नहीं है। बिना पिलर के और इतना लंबा और इतना चौड़ा सेतु का निर्माण भगवान ने कर दिया। वराह अवतार में संपूर्ण पृथ्वी को अपने दांतों के अग्रभाग पर उठाकर भगवान लाए, दांतों के अग्रभाग पर ला रहे हैं, कोई सिर पर लाद करके नहीं लाए, पूरा भूमंडल, इस भूमंडल के एक छोटे से कण को जिसको हम लोग ट्रक पर लादते हैं, रेलवे में लादते हैं, और उस ट्रक पर लादे हुए सामान को कोई कहे किसी मनुष्य को कि आप अपने दांत पर जरा इसको टांगिए, कोई टांग सकता है? कभी नहीं कर सकता। भगवान अद्भुत कार्य करते हैं, क्षितिर यह विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठ, ये तो कच्छप अवतार के लिए, धरणी धरण किरण चक्र गरिष्ठ, वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना शशिनी कलंक कले व निमग्ना केशव धृत शुकर रूप जय जगदीश हरे। और जब कच्छपा अवतार लिए थे भगवान तो उनके ऊपर मंदराचल पर्वत बहुत जोर से घुमाया जा रहा था, रगड़ा जा रहा था, और पर्वत के नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें निकली थी सोने की, और सोने का पर्वत घरर घरर भगवान की पीठ पर वो रगड़ा जा रहा था, बड़ी बड़ी चट्टानें, और बहुत वेग से देवता और दानव रगड़ रहे थे। पर वह पर्वत का भार और उसकी रगड़ भगवान को कैसा अनुभव हुआ, लगा उनके पीठ को कोई खुजला रहा है और उनको नींद आ गई आराम से, जैसे भगवान कच्छप को नींद आ गई। आज के युग में जो व्यक्ति भगवान अपने को कहता है या उसके चेला उसको भगवान कहते हैं तो उसके ऊपर केवल एक क्विंटल का पत्थर रगड़ कर देखना चाहिए कि ये भगवान है कि क्या देखा जाए, टेस्ट किया जा सकता है। इस प्रकार के शैतान जो अपने को भगवान कहते हैं उसको ऐसे पीठ के बल सुला करके, पेट के तरफ सुला करके पीठ पर पत्थर रगड़ रगड़ कर देखना चाहिए, तब उसकी भगवत्ता का पता चलेगा। भगवान तो ऐसे पर्वत रगड़ा जा रहा। तो भगवान इस तरह लीला करते हैं, प्रकट होते हैं मत्स्य अवतार में, ये बारह अवतार में, भगवान नृसिंह देव के अवतार में, फिर भी इस जगत में माया का पर्दा इतना घना है, इतना घना है कि लोग नहीं समझ पाते। और जब नृसिंह देव वाराह देव को नहीं समझ पाए तो कृष्ण को क्या समझेंगे, कृष्ण तो ऐसे ही मनुष्य से नाट्य कर रहे हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। जैसे श्री कृष्ण कभी कभी मां यशोदा से कहते थे सोए हुए गोद में, ऐसी घटना है कि एक दिन श्री कृष्ण मां यशोदा के गोद में सोए थे और कुछ बर्राने लगे, सपना में आदमी बोलता है ना, तो कहने लगे लक्ष्मण धनुष बाण लाओ मैं अभी रावण का वध कर देता। कृष्ण बोल रहे थे, सपना देख रहे थे, और राम तो है ही है, तो आवेश हुआ मैं राम हूं और रावण का वध करना है, तो लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, इतना कह करके मां यशोदा के गोद से खड़े हो गए। तो मां तो चकित हो गई, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो पकड़ करके सुलाई दूध पिलाने लगी, क्या हो गया तुमको, क्या बक रहे थे। तो दूध पीते समय श्री कृष्ण कहते हैं मां तुमको मालूम है मैं ही नृसिंह देव के रूप में अवतार लिया था, मैं ही हिरण्यकश्यपु का वध किया था। तो मां यशोदा कहती है तुम बिल्ली का म्याऊ म्याऊ शब्द सुनकर मेरे गोद में चिपक जाते हो और तुम नृसिंह बन गए हो, अरे बाप रे। तुम मानो या मत मानो देखो मैं ही वामन देव बना था, मैं पृथ्वी को नाप लिया था। तो माता यशोदा तमाचा तानते हुए कहती अरे मूर्ख जीव, कहां भगवान और कहां तुम, ऐसा कहना नहीं चाहिए, अपराध है, और तुम चौकट नहीं लांग पाते हो, इस घर से उस घर में नहीं आ पाते हो, और तीनों लोक नाप दिए थे। क्या ये बोल रहा है लड़का, ऐसा पागल मिल गया, ये भी नहीं सोचता है भगवान में और जीव में कितना अंतर है। तो श्री कृष्ण कभी कभी ऐसे कहा करते थे, मैं ही नापा था, बलि से छल किया था। तो मां कहती हाँ हाँ, इतना छोटा सा ऊंचा चौकट नहीं लांग पाते हो और तुम तीनों लोक नाप दी। तो मां यशोदा को विश्वास नहीं होता था, वो तो खैर स्वरूप शक्ति के अधीन है, वो तो भक्ति हुई, लेकिन महामाया के अधीन जितने जीव नहीं जान पाते हैं। तो ब्रह्मा जी यहां कह रहे हैं कि आपका ज्ञान, आपके ऐश्वर्य का पराक्रम का होना कठिन है अवतार लेने पर भी, अतः सबसे अच्छा उपाय ये है तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाण भुंजा नए आत्मकृतम विपाकम हृदवाग बपुर भी विद्धन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति प्रदेश दाय। इसलिए जो व्यक्ति प्रतिक्षण किसी भी अवस्था में आपके कृपा को ही देखता रहता है, सुसमीक्ष मार। हर एक स्थिति में यही आशा रखता है कि कब कृष्ण कृपा करेंगे, कब कृष्ण कृपा करेंगे। इसको अनुकंपम सुसमीक्ष मार। अथवा किसी भी स्थिति में जो व्यक्ति भगवान की कृपा को ही देखता है, कुछ हो जाता है तो कहता है भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, वास्तव मानता है हृदय से, सुसमीक्षण करता है किसी भी परिस्थिति में कृष्ण हमारे प्रति स्नेह कर रहे हैं, कृष्ण अनुकंपा कर रहे हैं, हम पर दया कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में। यह बहुत बड़ा गुण है भक्त का, तो वह व्यक्ति भगवान का दाय भक्त बनता है। किसी भी स्थिति में भगवान की कृपा देखनी चाहिए। जो भी हो रहा है वास्तव में भक्त के प्रति भगवान कृपा करते हैं। कोई शरीर में रोग हो गया, या धन का अभाव हो गया, या स्वजनों के द्वारा उपेक्षा हो गई, यहां तक कि माता और पिता भी तिरस्कार करने लगे, भाई नहीं माने। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज के पिताजी गोद में नहीं बैठा है, अपनी मां खुद सौतेली मां कह दी कि तुम मत बैठो और वन में जाओ, पिता गोद में नहीं बैठाया, परंतु माता सुनीति जो ध्रुव की असली मां थी वह उस स्थिति में भी भगवान की कृपा मानती थी और अपने बच्चे से कहे कि बेटा चिंता मत करो, तुम जाओ भगवान की गोद में जाओ, लक्ष्मी जी उन्हीं का भजन करती हैं, मनु महाराज करते हैं, ब्रह्मा जी उन्हीं का भजन करके विश्व सृष्टि की शक्ति प्राप्त किए, तो तुम जाओ विष्णु का आश्रय लो, चिंता मत करो, तुम अभी यहां पंचायत मत इकट्ठा करो। राजा से कोई क्या दिला सकता था। तो माता सुनीति ने बहुत सुंदर उपदेश किया है कि जाओ भगवान का भजन करो, यदि धन चाहते हो भगवान तुमको देंगे। तो ध्रुव महाराज गए तो पिता उत्तानपाद के मन में जो ऐसा हुआ कि इसको गोद में न लूं, तो यह भगवान की कृपा थी। अगर वो गोद में ले लिए होते तो ध्रुव महाराज आज ध्रुव महाराज नहीं बने होते, है ना। एक साधारण राजा बन करके भोगते, कौन जानता ध्रुव कौन है क्या है। लेकिन जो उनके जीवन में पिता के गोद में नहीं बैठने का अवसर जो हो गया, यही ध्रुव महाराज के जीवन को बदल दिया। भक्तों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो चाहे जो भी स्थिति हो, कोई भयावह रोग हो जाए तब भी कृष्ण की कृपा है। कृष्ण कोई न कोई कृपा का ही फेज चालू करते हैं। वे कहते हैं कि जस्या हम अनुगृहणामि हरिष्ये तद् धनं सनै। मैं जिस व्यक्ति को अपना बनाना चाहता हूं, अनुग्रह जिसको अपना बनाना चाहता हूं, उसके धन को छीन लेता। हरिष्ये तद् धनं सनै। ध्यान रखना चाहिए कि उसी भक्त का भगवान धन छीनते हैं जिसका धन छीनने के बाद भक्ति और बढ़ती जाती है। अगर धन छीनने से भक्ति घट जाए तो भगवान ऐसा काम नहीं करते। कुछ लोग तो कहते हैं भगवान कृष्ण बहुत खतरनाक है, धन छीन लेते हैं भजन करने वाले का। हाँ, जो धन बाधक हो रहा हो, भक्ति में गिरा रहा हो, तो उस धन को छीन लेते हैं। और कुछ लोगों को तो काफी धन दिए हैं, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, युधिष्ठिर महाराज, अम्बरीश महाराज, इन लोगों को तो भगवान धन दिए हैं, क्योंकि धन से लोग बिगड़ नहीं रहे थे। भगवान कृपा कर, धन एक बहुत बड़ा अनर्थ का कारण है, भगवान हर लेते हैं। तो उसके बाद भगवान कहते हैं कि जब धन चला जाता है भक्त का, तब उसके स्वजन उसकी उपेक्षा करते हैं। अब हमको कुछ दे ही नहीं रहा है तो उसकी उपेक्षा करने लगते हैं स्वजन। स्वजन जब उपेक्षा करने लगते हैं और बार बार धन के लिए प्रयास करता है, जब धन नहीं मिलता है, तब वो अंततः हार करके कहता है, हे कृष्ण बस अब आप ही मेरी शरण है। भगवान चाहते हैं कि जीव ऐसा कहे, ऐसी स्थिति में हो जाए। तो जो भी स्थिति हो, उस स्थिति में जो व्यक्ति भगवान की कृपा का हाथ देखता है, भगवान के अनुकंपा को भली भांति देखता रहता है, वह व्यक्ति भगवान के आनंद का दाय भाग प्राप्त करता है। मैं दाय भाग की बात बाद में कहूंगा, पहले यह कह रहा हूं कि सुसमीक्ष मानव कृपा देखनी चाहिए। लगता है कि अरे अरे ये क्या है, ये कौन सी कृपा भगवान की है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता भगवान कैसे कृपा करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को शरीर में कोई घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, तो उस बच्चे को स्वस्थ करने के लिए माँ उस फोड़े का ऑपरेशन करवाती है डॉक्टर से। जब घाव काटा जाता है ठीक करने के लिए तो बच्चा रोता है बहुत जोर जोर से। मैंने अपनी आंखों से देखा है किस तरह बच्चे माँ के तरफ आंख करके रोते हैं उस समय, और उनके मन में होता है कि हाय रे मेरी माँ मुझे इतना सता रही है। बच्चा बहुत करुण दृष्टि से माँ की तरफ देखता है, लेकिन माँ का स्नेहमय हृदय उस समय ऑपरेशन करके ही मानता है। बच्चा चाहे रोवे बिलखे कुछ भी करे, उसको अनुभव नहीं हो रहा है कि माँ मेरे प्रति बहुत अनुकंपा से युक्त है, तो वो रोता है। लेकिन जब फोड़ा ठीक हो जाता है बाद में वो हंसने लगता है। तो भगवान भी इसी तरह से करते हैं श्री कृष्ण, वो कब क्या कर रहे हैं उसमें भक्त का वो हित करना चाहते हैं। तो भगवान के इस कृपा विधान को जो देखता रहता है अनुकूल भाव से समझता है, वो भगवान के आनंद का ज्ञान का दाय भाग होता है, उत्तराधिकारी बनता है। तो यह एक गुण हुआ, तत्त्वानुकंपम सुस्मिक्ष मारो। इस विषय में एक बात लोग कहा करते हैं कि एक मंत्री था एक राजा का, तो मंत्री की आदत थी, ऐसा अनुभव था किसी भी परिस्थिति में वो कहता था बहुत अच्छा हुआ। तो कोई काम हो जाता था, कोई सुनाता था ये हुआ हुआ, तो कहता बहुत अच्छा भगवान की कृपा, बहुत अच्छा हुआ भगवान की कृपा। एक बार कुछ घटना घटी, राजा की अंगुली कट गई किसी कारण से, तीर चलाने में चाहे तलवार चलाने में जैसे भी। तो मंत्री के पास आया राजा, कहा कि अरे आज हमारी अंगुली कट गई, ये हो गई। तो मंत्री कहा बहुत अच्छा हुआ भगवान की कृपा, बहुत अच्छा हुआ। तो राजा तो इतना दुखी हुआ, वो तत्काल इसको जेल में बंद करा दिया मंत्री को। हमारी उंगली कटी है और कहता है कि बहुत अच्छा हो गया भगवान की कृपा हो गई, और उसको जेल में बंद करा दिया। कुछ दिन के बाद वन में गया राजा अपने सेवक के साथ, मंत्री नहीं गया। तो हम वन में जाने पर कुछ नरबलि देने वाले जंगली मनुष्य थे, वे राजा को पकड़ लिए जंगल में। जंगल में राजा को पकड़ लिए तो ये लोग भद्रकाली को नरबलि देने के लिए राजा को ले जा रहे थे पकड़ करके। तो जब ले गए तो देखने लगे कोई अंग नहीं कटा होना चाहिए, अगर कोई अंग कटा है तो भद्रकाली के लिए उपयुक्त पशु नहीं है, एक तरह का शरीर ठीक होना चाहिए। देखे कि इसकी उंगली कटी है तो डाकुओं ने कहा भेजो इसको, भगाओ, ये तो नहीं दिया जा सकता है इसको छोड़ दो, भगाओ भगाओ। दो चार तमाचा मारे राजा को और कहे भागो भागो, तुम भद्रकाली के लिए योग्य नहीं हो, कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी जिसका कोई अंग न कटा हो। तब राजा दौड़ करके आया घर और मंत्री को खुलवाया जेल से। अच्छा, मंत्री को जब जेल दे रहा था राजा तो मंत्री ने कहा था बहुत अच्छा भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है कि आपने जेल दिया। तो राजा जब पहुंचा घर पर तो जाकर मंत्री को खोला जेल से और कहा कि ओ मैं बहुत अपराध किया था आपका, आपने कहा कि बहुत अच्छी कृपा हुई भगवान की, तो मैं नहीं मानता था, यदि अंगुली नहीं कटी होती तो आज गर्दन कट गया होता, आज ये दशा हुआ है। तो उंगली काट कर भगवान ने हमारे मस्तक की रक्षा कर दिया, धन्य हो मंत्री साहब, बहुत अच्छा की। लेकिन तुमसे एक बात पूछता हूं मंत्री, कि बताओ मेरी उंगली कटी तो तुमने कहा कि भगवान की बहुत अच्छी कृपा हुई, बड़ी कृपा है, कि तुमको जेल में बंद किया तो तुम कहे कि भगवान की कृपा हो गई, ये क्या कृपा है? तो कहे कि अगर मैं आपके साथ होता ना तो मेरी गर्दन कटी होती तो भगवान ने मुझे जेल में बंद करके बहुत अच्छा किया क्योंकि मेरी उंगली तो कटी नहीं थी, सब अंग भंग नहीं हुआ था, मैं मरता। तो इस तो आपकी उंगली काट करके और हमको जेल में भेजकर भगवान ने बहुत अच्छा किया। ये प्रत्येक स्थिति में कृष्ण की कृपा का हाथ देखना, कृपा देखना। और भुंजा ने ये आत्मकृतम विपाकम, और कुछ भी सुख या दुख मिले, दुख मिले तो उसे आत्मकृतम विपाकम, अपने किए हुए कर्म का फल समझकर भुंजाना, भोगना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। वास्तव में काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्रात। कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है और न सुख दे सकता है इस संसार में। अपना किया हुआ कर्म ही कहीं से आता है, सुख के रूप में दुख के रूप में। और जब अपना किया हुआ है, पहले मान लीजिए हमने बुरा किया है और बुरे का फल बुरा आ रहा है, तो अब उसको अब भोगने में आना का नहीं, क्या करना है।